हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक नंबर 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु और गौरांग के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदावहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद द्वारा वेद व्यासी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। नारद मुनि वेद व्यासी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में मैं कोई राजकुमार नहीं था और न ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी था, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी। अहम पुराति तब हवे भव मुने दासस्तु काश्याश्चन वेदवादिना, ऐसी दासी का पुत्र था जिनके यहाँ पर वेदवादिना यानी जो वेदांती ब्राह्मण होते थे वो आते थे, और निरूपितो कल्प एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवेक्षता, और वहां पर आते थे जो चतुर्मास में वहां पर रुके थे तो उनकी सेवा मेरी माता करती थी और उनके साथ साथ मैंने भी उन ब्राह्मणों की सेवा का लाभ प्राप्त किया। और उसके बाद ते मैय पिता खिल चापले भके, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज तो अवश्य थी कि मैं चप्पल नहीं था, मुझे भौतिक वस्तुओं के अंदर रुचि नहीं थी। दांते दृढ़ है क्रीढ़ने का ना के नुवर्तित, और इंद्रियों को वश में रखा हुआ था खेल कूद में और भौतिक वस्तुओं में और स्पोर्ट्स में मुझे कोई इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट नहीं था। इस मेरी इस आज्ञा और मैं बहुत अनुवर्तित था, आज्ञाकारी था, और मेरी इन क्वालिटीज को देखकर चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शन, हालांकि वो तुल्य दर्शन होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं और भगवान होते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी असीम कृपा की। शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषय, और मेरी एक और भी क्वालिटी कि मैं बहुत कम बोलता था और ज्यादातर ध्यान जो है वो बोलने में नहीं बल्कि उनकी बातों को श्रवण करने में मुझे अत्यधिक आनंद आता था। और इस मेरी इन क्वालिटीज के कारण मुझे उनकी इतनी कृपा प्राप्त हुई कि एक बार 25 में बताया, उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजे सकृत स्मभुंजे तदपास्त किल विषय, उनकी उच्चिष्ट को सेवन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद जैसे ही मैंने एक बार उनकी जूठन को सेवन किया तो तदपास्त किल विषम, जितने भी मेरे हृदय के अंदर किलबिष थे वो सब समाप्त हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, और इस प्रकार हृदय जो है वो बहुत ही शुद्ध हो गया। तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, और हृदय पवित्र होने के कारण मुझे उनका स्वभाव बहुत आकर्षण करने लगा। वैसे भौतिक वस्तुओं में ही जीव का आकर्षण होता है, लेकिन जब हृदय पवित्र होता है तो फिर आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिक वस्तुओं में, आध्यात्मिक व्यक्तियों में और भगवान की ओर हमारा आकर्षण निर्माण हो सकता है। और उसके बाद श्लोक नंबर 26 में आज बता रहे हैं, तत्रान वहं कृष्ण गाथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृणवाम मनोहरा ताशत थयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचिः तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रवणं मनोहर ताशत् थयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचि तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा ताशत् थयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचि तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा ताशत्थयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचिः तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा शृणवं मनोहरा ताश्रद्धयो मेनुपदं विष्णुवतः प्रियश्रवस्यंगममा भवद्रुचिः। शब्दोकात् तत्र, तत्रान वहम, तत्र मतलब वहां पर, अनु मतलब प्रतिदिन, अब डेली ऐसा होता था, अहम में कृष्ण कथा, कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन, प्रगायता गायन करते हुए, अनुग्रहेण अहितु की कृपावश, अश्रवम सुनते हुए, मनोहरा आकर्षक ता वे श्रद्धया आदरपूर्वक मैं मेरा अनुपदम प्रत्येक पग पर वे श्रुणवतः ध्यान से सुनते हुए प्रिय श्रवसी भगवान का अंग हे व्यासदेव मम मेरा अभवत ऐसी बन गई रुचि अर्थात प्रवृत्ति ही। अनुवाद हे व्यासदेव उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने साकार रूप में आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों में भी है। इसका कारण यह है कि वे अपने नाम यश रूप लीलाओं पार्षदों सामग्री आदि के कारण श्रेष्ठ हैं। भगवान अहितु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इससे मानव प्राणी उनके प्रति आकर्षित होकर भगवतम जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उससे उसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे प्रकृति के तीनों गुणों से अनुरक्त होता जाता है। समय गवाने की उपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों से धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे संसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप को के प्रति आकर्षित होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय ये है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से ही भगवान का पार्षद बना जा सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण करने वाले हैं। सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने करके ही मनुष्य जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों अर्थात भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त किया, भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कला प्रदान अर्थात कलयुग में के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला सुकंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 26। अत्यंत सुंदर रीति से नारद मुनि अपने जो भाग्य की सराहना करते हुए जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसके विषय में बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों ये इतना सुंदर है कि जब हमें भक्तों की एसोसिएशन में भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, वास्तव में हमारे जीवन की जो अच्छी से अच्छी घटना होती है ना वो हम सदैव याद रखते हैं, और जब भी कोई कंपनी होती है, जैसे हम हमारा कोई मित्र होता है तो हम उसको बताते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो मैं कभी नहीं भूल सकता, है ना, मोस्ट मेमोरेबल जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होते हैं। तो नारद मुनि अपने पिछले जन्म में, पिछले कल्प में जब उन्होंने जन्म लिया था और तब उन्हें साधु संघ प्राप्त हुआ था, उसके विषय में बता रहे। वास्तव में भक्तों, दुनिया में बहुत सारे व्यक्तियों से हमारी भेंट होती है और बहुत कुछ सुनने को, सीखने को, समझने को प्राप्त होता है। इस संसार के भौतिक ज्ञान को हम अलग अलग व्यक्तियों से सुनते हैं, परंतु वह समय जिस समय हमने किसी शुद्ध भक्त से भागवत कथा श्रवण की होती है, उस समय से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय वही होता है जब आप भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हो और किसी शुद्ध भक्त का आपको सानिध्य प्राप्त होता है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पर नारद मुनि अपने उसी समय के विषय में बता रहे हैं। तत्रान, तत्र मतलब वहां पर, वह समय जब चतुर्मास में ये सारे वेदांती ब्राह्मण हमारे पास आए थे। अहम, अनु, अनु का मतलब होता है प्रतिदिन। अब हमारा, मेरा ये डेली का रूटीन बन गया था कि जब वो आए थे तो मैं डेली प्रतिदिन अहम यानी मैं कृष्ण कथा प्रगायता, यानी कि अब क्या है कि वो रोजाना मुझे कृष्ण की कथाओं का वर्णन करते थे वो, और मैं उनको श्रवण करता था। मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं बस हृदय करता था अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा, उनकी कृपा के कारण, अनुग्रह उनका इतना हो गया था कि मुझे सुनने में बहुत आकर्षण। वास्तव में भक्तों, इस संसार में भगवान की कथाओं में यदि अनुग्रह हो जाए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में यदि आकर्षण उत्पन्न होना, तो उससे अधिक और कोई कृपा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती, कि हमें भगवान से प्रेम हो। वास्तव में कृपा यही है। अगर हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करने में आनंद आ रहा, देखो नारद मुनि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो जब भगवान की कथाओं को गाते थे, कृष्ण कथा प्रगायता अनुग्रहेण श्रवणम मनोहरा, मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे श्रवण करने में। क्यों? क्योंकि उनका अनुग्रह हुआ था। गुरु और कृष्ण की कृपा होती है एक जीव के ऊपर, तब उन्हें भगवान के विषय, वरना फिर संसार में सब लोग है ना अलग अलग बातें करते रहते हैं, या गॉसिप करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी के बारे में विषय में बात करेंगे, या तो ऐसी बातें करेंगे जिसमें ना स्वर है ना स्वाद, मतलब फिजूल की बातें करेंगे, कोई लाभ नहीं उसका। और इस तरह की बातें, भाई हाँ, उसने, वो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे किया, वो क्रिकेटर ने ऐसे किया, वो एक्टर ने ऐसे किया, वो लोग तो तुम्हें जानते ही नहीं है। आप उनके बारे में बात कर रहे हो, उस लोग को आपके बारे में पता भी नहीं है, उन लोगों के जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है, और आप उनके विषय में बात कर रहे हो, अपने समय को इतना वेस्ट कर रहे हो। तो फिर है ना, लोगों की रुचि फिर भी उसी में होती, फिजूल बातें। लेकिन अगर हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करने में आनंद आना शुरू हो गया ना, तो समझो भगवान की कृपा हो गई है। और आगे कहते हैं, ताश्वत्थयो मेनु पदं विश्रवतः। अब श्रवतः का मतलब होता है सुनना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विश्रवतः। विश्रवतः का मतलब है बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। वास्तव में भक्तों, हम जब है ना भगवान की कथाओं को श्रवण करते ना, तो श्रवण कभी कभी करते भी हैं, लेकिन उसमें ध्यान इतना नहीं लगाते हैं, है ना। ध्यान इधर उधर घूम रहा होता है, हम कथा में बैठे होते हैं, फिर जब पूछते भी हैं, अगर वक्ता कभी पूछ लिया कि मैंने क्या सुना, तो बोलेंगे भाई मेरा ध्यान नहीं था, ध्यान। लेकिन यदि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ताश्रद्धयो मेनु पदम विश्रवता, जब मैंने ध्यान से सुना तो फिर और भी, क्योंकि श्रद्धा से और ध्यान से सुनना, जब भी हम श्रवण करते हैं भगवान की कथाओं का, तो हमारे पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो हम श्रद्धा से श्रवण करें कि जो बताया जा रहा है अब ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी आके बता दे उसके अंदर श्रद्धा नहीं, वो जो बताया जा रहा है वो ऑथेंटिक शास्त्र के द्वारा हो और प्रमाणिक कोई बता रहा हो वो भी प्रमाणिक हो, यानी गुरु परंपरा की श्रृंखला से आता हुआ वही प्रमाणिक सत्य बता रहा है जो कि शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा विश्रवणता, उसे हमें बहुत ही ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज नहीं है ना तो फिर ये नहीं होगा। क्या ताश्रद्धयो मेनुपदम, पद अनुपदम का मतलब है प्रत्येक पग पर है ना, एक एक कदम पे एक एक, फिर जिस तरह अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी और हमारे अंदर ध्यान से सुनेंगे हम, तो फिर पग पग पर हमें नव नव रस का आस्वादन होगा। वही कथा को यदि हम बार बार सुनेंगे लेकिन श्रद्धा होगी हमारी कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के विषय में श्रवण करने से ही मेरा कल्याण होगा, और दूसरा कि मैं ध्यान से श्रवण कर रहा हूँ, तो फिर इतना आनंद, यहाँ तक कि कभी ये भौतिक वस्तुएं जो होती है, भौतिक चीजें, कथाएं जो भी हम सुनते हैं, उसमें क्या होता है, एक बार सुन लो, दो बार सुन लो, फिर तीसरी दफा बोलेंगे नहीं ये वाली कथा मुझे नहीं सुननी है, मैंने पहले ये वाली स्टोरी सुनी हुई है ना, तो वो उसमें हमें आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान की कथाएं और भगवान का नाम, देखो हम कंटिन्यूअस श्रवण करते हैं भगवान के पवित्र नाम का, कीर्तन करते हैं, अगर उसके अंदर श्रद्धा है और प्रेम है तो वो हमें कितना आनंद दे रहा होता है ना। लेकिन कोई भौतिक लोग होंगे कि एक ही नाम को बार बार आप कैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, मतलब थकते नहीं हो, कंटिन्यूअस यही हरे कृष्ण को पढ़ते रहते हो, कैसे चामले, मतलब इतना टेस्ट कैसे आता है। वास्तव में जितना प्रेम होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना ध्यान से हम इसको करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। रूप गोस्वामी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझे भगवान, ये दो वर्ड का भगवान का नाम है कृष्ण, और ये चार शब्द का महामंत्र है, सॉरी तीन शब्दों से बना हुआ ये महामंत्र है, हरे कृष्ण और राम, और इसमें इतना आनंद है कि इतना टेस्ट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक जीभा उस टेस्ट को पूरी तरह से आस्वादन नहीं कर पा रही। काश कि मेरी करोड़ों जीवाएं होती तो मैं इसका आस्वादन अच्छे तरीके से कर सकता। काश कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान होते जिससे मैं इनको श्रवण कर पाता। माना ऐसा नहीं है कि ये एक ही नाम है और उसमें एक सा ही स्वाद, जैसे भौतिक वस्तु में क्या होता है, एक सा ही स्वाद आता है, परंतु भगवान का पवित्र नाम और भगवान की कथाएं इतनी आस्वादनीय है, इतना स्वाद है उनके अंदर, अमृत है अमृत। तो जितना जितना हम उसको श्रवण करते जाते हैं तो हमें और भी टेस्ट आता जाता है। लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और विश्रवतः प्रेम से, श्रद्धा से और ध्यान से हमें श्रवण करना चाहिए। और नारद मुनि बता रहे हैं प्रिय श्रवस्यंग ममा भवद रुचि, और इस तरह से मैंने श्रवण किया तो मेरी रुचि और भी तीव्र होती गई भगवान की कथाओं में, और भी रुचि बढ़ने लगी, विकसित होने लगी। वास्तव में भक्तों आज हम जो ये श्रवण कर रहे हैं ना भगवान की कथाओं का, श्रीमद् भागवतम का, ये इतना ये महत्वपूर्ण कार्य है। उसके विषय में नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मैंने श्रवण किया तो मुझे इतना सुंदर लगा, इतना मीठा लगा, मैं बार 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 श्रवण करने की ओर आकर्षित हो रहा था, क्योंकि मेरे अंदर इतना उत्साह उत्पन्न हो रहा था। क्यों? इसलिए क्यों? क्योंकि मैं ध्यान से सुन रहा था और मेरी पूरी श्रद्धा थी, और मेरे अंदर भौतिक, पहले ही बोल दिया कि मेरे अंदर भौतिक इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। भगवान की कथाओं को श्रवण करने का कितना लाभ होता है वो तो हमें पहले भी वेद व्यास जी ने बताया है, उसको थोड़ा सा हम वापिस से रिपीट करेंगे ताकि हमें पुनः हमारे अंदर भी भगवान की कथाओं को श्रवण करने की रुचि उत्पन्न हो। वेद व्यास जी कहते हैं 1.2.15 में, यदनु ध्यासेन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम्, चिन्दन्ति कोविदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम्। कि ये जो भगवान की कथाएं हैं वो तो तलवार की तरह है, और ये कैसी तलवार है, किसको काटती है? कर्म ग्रंथनि बंधना, वो जो कर्म की कर्म बंधन की गांठ है जिसके कारण हमें पुनर इस संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है, हमारे उस कर्मों की गांठ को, उस बंधन को, चिंदन्ति कोविदास्तस्य कोन कुर्यात् कथारतिम्, तो वो उस बंधन की गांठ को काट देती है। अतः ऐसा कौन दुर्भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो कि भगवान की इस संदेश को श्रवण करने में रुचि नहीं रखेगा। तो नारद मुनि आज बता रहे हैं कि भगवान की कथाओं की ओर मेरी रुचि उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अब उसी के कारण मेरी, अब देखो ये ज्वलंत प्रमाण है कि जैसे ही नारद मुनि की भगवान की कथाओं में आसक्ति उत्पन्न हुई तो वो एक दासी के पुत्र से देवर्षि बन गए। मतलब उनके कर्मों की संपूर्ण गांठ ही तो खुल गई ना। और इस कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है, हमने पढ़ा था 1.2.16 में, अत्यंत ही सुंदर है। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है जैसा कि लिखा हुआ है। क्या लिखा है, शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवणात्। कि सबसे पहले जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त हैं उनकी सेवा, स्यान्महत्सेवया विप्र, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त वास्तव में भक्तों भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न करने की कोई और रुचि कोई और तरीका है ही नहीं। हृदय के अंदर अगर दूसरे कोई तरीके हैं भी ना तो वो इतना स्लो कार्य करेंगे कि हम उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कितना इजी है, इतना इजी और इंस्टेंट असर दिखाने वाला है कि शुद्ध भक्तों की सेवा करो और फिर आपको भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी, भगवान की कथाओं में रुचि हो जाएगी अर्थात आपकी कर्म ग्रंथ या सारी जो कर्मों की गांठें हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और कर्मों की गांठें खत्म हो गए तो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे प्राप्त होगा, स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थनि श्रेवणात्। ऐसे भक्त जो पुण्य तीर्थों में जाकर भगवान की सेवाएं करते हैं, जो कि ऐसे महत सेवाओं की महत जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सेवा करने से, उनकी यदि हम सेवा करते हैं तो ऐसी सेवा से वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में हमारी रुचि उत्पन्न होती है। और ऐसी रुचि से क्या होता है, 1.2.17 में बताया, श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यंतस्थो हि भद्राणी विधिनोति सुहृत्तसाम। श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। फिर हृदय में यदि भगवान की कथाओं के प्रति रुचि हो जाएगी ना, फिर वही करेंगे जो भी काम है आगे का, वो भगवान की कथाओं का श्रवण की जो श्रद्धा है, जो श्रवण के अंदर प्रेम है ना, वही आगे क्या करेगा, हृदयंस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्तसाम। हृदय के अंदर जो अभद्र है, जो अपराध की भावना है, जो अनर्थ है, विधुनोति, उनको विमल बना देगा, साफ कर देंगी, भगवान की कथाएं कानों के रास्ते से हृदय के अंदर प्रवेश करेंगी। और श्रवताम स्व कथा कृष्ण, ऐसी भगवान कृष्ण की कथाएं श्रवण करने से पुण्य श्रवण कीर्तना, इतनी पुण्यवान है, इतनी पावन है जो भगवान की कथाएं, भगवान का नाम, भगवान का रूप लीलाएं, ये सब भिन्न अभिन्न है, वो सब एक ही है, और जब वो हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं, अर्थात भगवान जो है वो स्वयं प्रवेश कर रहे हैं कथा के रूप में। प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया था कि भगवान की कथाएं और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं और भगवान की समस्त जो भी भगवान से रिलेटेड वस्तुएं हैं ना वो सब दिव्य हैं, तो भगवान की उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हृदय के अंदर भगवान की कथा कान के द्वारा जाती है, समझो भगवान अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके क्या करते हैं, हृदयंतस्थो या भद्राणि, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं विदनोति सुहृतसाम, उनको विमल बना देते हैं, उनको स्वच्छ कर देते हैं, उनको हृदय को इतना पवित्र कर देते हैं कि फिर उसके अंदर भगवान का प्रेम अति शीघ्र भगवान का प्रेम उसमें उत्पन्न हो जाता है और भगवान ऐसे हृदय में कैद हो जाते हैं। वास्तव में भक्तों ये भगवान की हेतु की कृपा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को इस संसार में आकर कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान कहते हैं परित्राण है साधु नाम विनाय दुष्कृतम, उसके लिए भगवान को इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। वो जब अपने ब्रकुटि के एक इशारे से संपूर्ण ब्रह्मांडों को हवा में तिरा रहे हैं, तो फिर क्या वो परित्राण साधुना विनाशय से दुष्कृतम नहीं कर सकते? वो सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान इस संसार में आते हैं ताकि वो सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करें, जिसको श्रवण करके हम जैसे अपवित्र जीवों का हृदय पवित्र हो। विदनोति सुहृतसाम, तो भगवान केवल कृपा करने के लिए संसार में आते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जीव को श्रवण करने के प्रति अत्यंत आसक्ति है, सुनना उसको अच्छा लगता है, तो जीव सदैव कुछ न कुछ सुबह से उठकर रात तक सुनते रहते हैं। लेकिन श्री रूपा जी बताते हैं किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है। जीव इस संसार में आकर अपने पवित्र चेतना को भूल जाता है और अज्ञानता के कारण भौतिक वस्तुओं को श्रवण करने से ही समझता है कि मेरा कल्याण है, लेकिन वास्तव में वो क्या है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। ये इससे तो उसका कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है, केवल समय ही उसका वेस्ट हो रहा है। और जितना जितना हम भौतिक वस्तुओं के विषय में श्रवण करेंगे, उतना ही उतना हमें भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम जिसके विषय में श्रवण करते हैं उसी के विषय में हमें ज्यादा अनुराग होता है। तो लेकिन अगर हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा और भौतिक वस्तुओं की ओर से हमारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। हृदय के जितने भी अमंगल हैं, जितने अनर्थ हैं, वो नाश हो जाएंगे और इस तरह से समस्त पापों के धुल जाने पर हृदय के अंदर भगवान के रूप में, भगवान के गुण में, भगवान की लीलाओं की आसक्ति उत्पन्न होगी। और यही नारद मुनि ने अपने एक्सपीरियंस, उसका जीवन का है कि उन्होंने क्या किया था, भगवान की कथाओं को कैसे सुना था, ता श्रद्धयो मेनु पदम विश्वास, मैंने हृदय से श्रद्धा से उनको सुना था और बहुत ही ध्यान से सुना था, जिसके कारण मुझे भगवत प्राप्ति हुई। देखो नारद मुनि कैसी उनका कितना सौभाग्य है कि वो बगैर किसी रोक टोक के हर जगह पर जा सकते हैं, वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, हर जगह पर जहाँ पर भगवान जब उनका दिल करता है भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और उन्होंने किया क्या था ये सब, ये स्टेज प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायता, वो भगवान की कथा करते थे जो शुद्ध भक्त हमारे यहाँ पर आते थे, और मैं क्या करता था, अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा, मैं वो कथाओं को श्रवण करता था। बस कैसे श्रवण करता था, ताश्रद्धयो मेनु पदम विश्ववात, में बहुत श्रद्धा से और ध्यान से श्रवण करता था। और इस तरह से क्या हुआ, प्रिय श्रवण संग ममा भगवत रुचि, और इस तरह से हृदय में रुचि उत्पन्न होती थी भगवान की कथाओं को और भी आस्वादन करने के लिए। और श्रवण करने की विधि बताई है श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा ही, जो भक्त नहीं है वो भगवान के विषय में आपको कुछ नहीं बता सकता। तो हमारा सौभाग्य है कि हम साक्षात श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से इन शब्दों को श्रवण कर रहे हैं और वेद व्यास जी के द्वारा ये रचे हुए शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी एक और खास बात बता रहे हैं कि जो कला प्रदान कलयुग है, इस युग के लिए बाकी सारे जितने भी आप पे ना कार्य करते हो वो आप अच्छे से नहीं कर सकोगे। भक्ति में जितना भी है, चाहे विग्रह पूजा है, चाहे यज्ञ है, चाहे ध्यान है, वो सब आप इतना, इवन जप भी हम इतना कंटिन्यूस नहीं कर सकते। हरिदास नहीं बन सकता कोई भी, कि जैसे जप में वो कैसे करते थे कि पूरा ध्यान जप में लगा हुआ है, 300,000 बार जप कर, हम नहीं कर सकते। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आपको श्रवण करने में रुचि, जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा ना, तभी भले ही युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन वह हरिनाम संकीर्तन के प्रति हमारे हृदय में रुचि कब उत्पन्न होगी, हमारे हृदय में आकर्षण कब उत्पन्न होगा, हमारे हृदय में इच्छा और प्रेम किसे उत्पन्न होगा, जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो इसीलिए नवला भक्ति में भी भले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करना, ऐसे नहीं कहा कीर्तनम श्रवणम, नहीं, पहले श्रवण करोगे तो आपके कीर्तन में, आपके जप में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। आगे कहते हैं नारद मुनि श्लोक नंबर 27 में, तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य कलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचि महामति प्रियश्रवस्य खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि भ्रमणिकल्पितं परे। शब्दों का अर्थ, तस्मिंस्तदा मतलब ऐसा होने पर कैसा होने पर, जब मैंने उनके द्वारा भगवान की कथाओं का श्रवण किया और मेरा हृदय और पवित्र हो गया और उनकी कथाओं को सुनने की और भी आकर्षण रुचि और भी बढ़ गई, तो इस तरह से ऐसा होने के बाद तस्मिंस्तदा लब्ध रुचिर महामते, उस समय लब्ध प्राप्त हुई रुचि हे महामुनि, मुझे और भी रुचि उत्पन्न हो गई। वास्तव में जितना जितना हम भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करते जाएंगे ना, तो और भी उसको सुनने की अभिलाषा बढ़ती जाएगी। अर्जुन भी बोलते ना भगवान को कि जितना अधिक मैं आपके विषय में सुन रहा हूँ, उतना ही अधिक आपके विषय में श्रवण करने की अभिलाषा और भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, तस्मिन् तथा लभ्य रुचिर महामणि, मेरी और भी रुचि विकसित होने लगी और उसके बाद प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रिय श्रवस्य भगवान को कहते हैं, यानी भगवान के ऊपर अखलिता मति, मेरी अनवरत ध्यान, मतलब अब मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं था, जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे ना तो कंटिन्यू ध्यान, वास्तव में जिसके बारे में भी श्रवण करेंगे ना तो ध्यान उधर ही जाएगा, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों के प्रति, भक्तों के द्वारा भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो अस्खलिता मति, फिर मति किधर और जाएगी नहीं, केवल उसी भगवान पर टिकी रहेगी। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है संसार में, भौतिक वस्तुओं से मति जो है वो हटकर भगवान की ओर में लगना, मैं माना मेरा। और आगे कहते हैं सदसत्समायया, इसके बाद क्या हुआ, जब मेरा ध्यान भगवान से हटता ही नहीं था, और उसके बाद यया जिससे अहम मैं एतद ये सब सदसद यानी स्थूल तथा सूक्ष्म स्वमाया अपने ही अज्ञान से, मैं क्या सोचता था कि अपने आप को अगर हम शरीर समझते हैं या ये सूक्ष्म शरीर, सद असद दो चीजें बता रहे हैं, सद शरीर और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो, और हमारा जो स्थूल शरीर है पंच भौतिक इंद्रियों से बना हुआ है वो, जब तक जीव के अंदर ज्ञान नहीं होता है तब तक अपने आप को स्थूल और ये सूक्ष्म शरीर ही समझता है, तब तक उसे अपने हृदय में विराजमान आत्मा के विषय में कुछ भी पता नहीं होता है, क्यों, स्वमाया अपने ही अज्ञान से। और जैसे ही भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय पवित्र हो जाता है तो सबसे पहला क्या क्या काम होता है कि हमारी अज्ञानता नाश हो जाती है बस, बल्कि ये सोचो कि काम ही यही होता है भगवान के साथ संपर्क करने में, भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएशन करने में, भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अगर वास्तविक लाभ है ना तो वो यही लाभ है कि हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है। बात कितनी छोटी सी है जो पहली क्लास में बता दी जाती है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, लेकिन इस बात को समझने के लिए ही सारा कुछ है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शिक्षाएं हैं, जितना जो कुछ भी है, इस बात को जब रियलाइज कर देता है ना एक जीव, फिर बस ये अज्ञानता ही समाप्त हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर केवल हम आत्मा होंगे और हम भगवान के दास होंगे और भगवान के दासत्व में रहकर आनंद प्राप्त करेंगे, भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, प्रिय श्रवस्य खलिता मतिर ममा, कि हृदय के अंदर जो अनर्थ थे वो तो सब भगवान की कथाओं को श्रवण करने से और भी ज्यादा क्या लब्ध रुचिर महामत, उनकी भगवान की कथाओं में जैसे जैसे रुचि उत्पन्न हो रही थी तो अपराध नष्ट हो रहे थे और फिर पूरा ध्यान जो है वो भगवान के अंदर केंद्रित हो रहा था, और यया हमें तत् सदसत समाया, और मैं अपने आप को जो ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर समझ रहा था ज्ञान के कारण, पश्चिमयी ब्रह्मणी कल्पितम परे, फिर मुझे क्या लगा, पश्चिमयी देखता हूँ, मई यानी मुझ में ब्रह्मणी पर जो पर ब्रह्म यानी परमात्मा को स्वयं अपने हृदय में देखता हूँ, कल्पितम स्वीकार किया जाता है परे आध्यात्म में, वो भगवान जो दिव्य है जो आध्यात्मिक है उनको मैं अपने ही हृदय में देखता हूँ, और फिर मुझे ये रियलाइज हो जाता है क्योंकि अज्ञानता खत्म हो गई, अब मुझे ये रियलाइज हो जाता है कि मैं और भगवान दोनों ही दिव्य हैं, मैं भी दिव्य हूँ, मैं कोई भौतिक ये शरीर नहीं हूँ, मैं कोई ये सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि अहंकार और ये पंचभूत का बना हुआ एक घृणित हार्ड मास का कोई पुतला नहीं हूँ, मैं तो दिव्य हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, और जितना दिव्य भगवान है मैं भी वही उतना ही दिव्य हूँ, और मेरा संबंध इन भौतिक वस्तुओं से नहीं है, केवल भगवान के साथ है। तो जैसे जैसे नारद मुनि कहते हैं, अनुवाद देखिए, हे महामुनि ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ त्यों मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अचल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मैंने ये दिव्य संबंध को भूल गया अज्ञानता के कारण, तो मुझे यह भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ, ये केवल अज्ञानता थी। लेकिन जैसे जैसे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो गई तो ये अज्ञानता समाप्त हो गई, अपने दिव्य अस्तित्व आत्म साक्षात्कार को मैंने प्राप्त कर लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी का बता रहे हैं कि भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की जाती है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा कि सारे अज्ञान का को भगा देना। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से बताया है कि अज्ञानता जो हृदय में है ना, वो अंधकार है, और श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। यहाँ कृष्ण ताहार नाही मायार अधिकार। ये अज्ञानता जो हमें माया में बारंबार संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती है, वो तब तक ही हमारे हृदय में बैठ सकता है, वो अंधकार अज्ञानता का, जब तक कृष्ण का नाम गुण लीलाओं को श्रवण ना कर ले। और भगवान का नाम गुण लीलाएं वो स्वतः भगवान ही है, और भगवान क्या है, सूर्य है। जैसे ही भगवान किसी भी रूप में, नाम के रूप में, कथा के रूप में, लीलाओं के रूप में, श्रवण के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये जो अज्ञान का अंधकार है उसे बोलना नहीं पड़ता है। जिस तरह सूर्य है, जब सुबह को सूर्य उदय होता है तो क्या हम अंधकार को बोलते हैं कि देखो अंधकार अब आप चले जाइए, अब सूर्य आया है तो सूर्य को है ना प्रकाश करने दीजिए? कोई बोलता है इस तरह अंधकार को? नहीं, अंधकार खुद ही भाग जाता है, है ना। सूर्य से डरता है अंधकार, इसलिए जहाँ सूर्य की प्रकाश होता है ना वहां पर अंधकार नहीं आता। उसी तरह से अज्ञानता जो है, मोह जो है, अनर्थ जो है, अपराध जो है, वो सब डरते हैं कृष्ण के नाम से, कृष्ण की लीलाओं से। तो जैसे जैसे जीव जितनी जितनी विकसित करता है उनके प्रति श्रद्धा, जितना आदर, जितना ध्यान से हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के पवित्र नाम को जप करते हैं, तो ये अनर्थ, ये अपराध, ये कलमश, ये सब भाग जाते हैं, क्योंकि डरते हैं वो भी। जिस तरह सूर्य के सामने अंधकार नहीं रह सकता, उसी तरह भगवान के सामने माया का ये जाल नहीं रह सकता। केवल अज्ञान वश ही बद्ध जीव, जो आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल अज्ञान वश ही बद्ध जीव झूठ ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो अविद्या हट जाती है, क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जाता है। बहुत ही सुंदर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब अज्ञान होता है ना, अंधकार होता है, तो जीव क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और भगवान भी, भगवान को भी भौतिक समझता है। आध्यात्मिकता की बात उसको, क्योंकि आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, तो आध्यात्मिकता तक सोच जाती नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान के भक्तों के साथ संपर्क हो जाता है और भगवान की लीलाओं का श्रवण करने लगता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगता है, तो उसे यह रियलाइज होता है कि हम, मैं और भगवान इस भौतिक जगत के नहीं है, इस भौतिक प्रकृति से के नहीं है, हमारा इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और जब इस तरह से अज्ञान दूर हो जाता है तो फिर हृदय के अंदर यह प्रकाश आ जाता है कि भगवान के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो जान जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान के ही कारण है। तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि चाहे शरीर स्थूल हो या सूक्ष्म हो, जो कुछ भी है उसका अस्तित्व क्यों है, भगवान के कारण है। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को क्या करता है फिर, वो जो ये शरीर, मन और इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा रहा होता है तो वो क्या कर देता है, अब उनको भगवान की सेवा में प्रवृत्त कर देता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्योंकि जीव जब तक अज्ञानता में है तब तक वो किस लिए कार्य करता है, शरीर को, इंद्रियों को, मन को संतुष्ट करने के लिए। फिर जब अज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इस शरीर में आया हूँ। अब ये फिर भी उसे ये पता चल जाता है कि ये शरीर जो है वो भी उसका अस्तित्व भी भगवान के कारण है, और भगवान के कारण है तो ये शरीर भी भगवान की सेवा में यूज करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसको यूज करना है। फिर मन से भी भगवान की सेवा और इंद्रियों से भी भगवान की सेवा, और किस तरह से करेंगे वो श्रीला प्रभुपाद जी हमें अभी बताएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में, यथा जल लाने में, मंदिर बुहारने में या नमस्कार करने में आदि में लगाना चाहिए ना। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए वस्त्र बनाते हैं, और भगवान के लिए ना जल मंदिर साफ करते हैं, और भी जो कुछ भगवान के लिए अलग अलग सेवाएं करते हैं, कोई पुष्पमालाएं बनाते हैं भगवान के लिए, गजरे बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो इस तरह से स्थूल शरीर भगवान की स्थूल सेवा के लिए, और अर्चना में या मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस तरह स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करने में होता है। और सूक्ष्म शरीर क्या है, मन बुद्धि और अहंकार, उसको कैसे भगवान की सेवा में बताएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने में, चिंतन करने में, भगवान के नाम आदि के कीर्तन करने में लगाना चाहिए। श्रवण करना सबसे पहला, हमारा सूक्ष्म जो है ना शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसको सेवा में लगाने का एक ही तरीका है, श्रवण करना। जब हम जप भी कर रहे होते हैं ना, देखो जप से क्या होता है, हमारा ये तो स्थूल शरीर से हो रहा है, मुंह तो स्थूल है ना, उससे हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हमारा सूक्ष्म शरीर, कुछ कुछ लोग है ना जप करेंगे ना तो उसके अंदर ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन हमें क्या करना है, जब मुंह से भगवान का नाम निकले ना तो उसको श्रवण करना, ये विधि है। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो जो जो हम हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं ना उनको श्रवण करना, उससे क्या होगा, हमारे जो स्थूल ये जो शरीर है वो तो सेवा में लग ही रहा है, साथ साथ में हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी भगवान की सेवा में लग रहा है। और उसी तरह से हम जब कथाओं का श्रवण कर रहे होते हैं तो अगर हम सिर्फ कान के जरिए सुनेंगे ना तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा, जब ध्यान से सुनेंगे। जैसे नारद मुनि भी बता रहे हैं ना कि मैं कैसे सुनता था, ताशतयो मेनु पदम विष्णुवतः, मैं विष्णुवतः, मैं बहुत ध्यान से सुनता था। और जब ध्यान से सुनते हैं तभी मैरिकल होता है, हृदय के अंदर जो गंदगी है उस वो पवित्र हो जाती है, अनर्थ दूर हो जाते हैं, भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न होने लगती है। और अंत में तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक कह दिया कि भगवान के नाम आदि के कीर्तन में हृदय को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को और स्थूल शरीर को लगाना चाहिए। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को किस लिए लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सारे कार्य दिव्य हैं और हम क्योंकि आत्मा है, हम भी दिव्य हैं, तो हमें भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए, दिव्य कार्य करने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त ना करें। इसके अतिरिक्त कोई भी कार्य यदि वो भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें केंद्र भगवान को नहीं बना रहे हो तो नहीं करो। फिर दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक अनेक वर्ष तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती। अब ये अनुभूति कि आप कोई भी कार्य करो, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कार्य करो और फिर भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए या फिर भौतिकता के लिए कोई कार्य नहीं करो, तो ये स्टेज बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से हम केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते आए, तो अचानक से आपको कोई बोले कि आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, तो ये करना बहुत मुश्किल है ना। फौरन से मन डाइवर्ट नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। और यहाँ पर नारद जी के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने देखो साफ साफ कहा है कि दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में सहज प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत ही प्रभावशाली होता है। जब हम पवित्र शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करते ना, तो फिर इंस्टेंट होता है, जल्दी से हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर श्रवण भक्तों के साथ नहीं करेंगे, खुद से प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे वर्ष लग जाएंगे, लेकिन शुद्ध भक्तों का सानिध्य और साथ में भगवत कथा प्राप्त हो जाए, तो फिर फौरन से सद्यो रिद्य वरुद्य तेत कृति भी शुश्रूषु विस्तक्षण। अरे सुनने की क्या बात कर रहे हैं, जिसे शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करने की इच्छा भी अगर तीव्र इच्छा हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाए, तो उसी समय भगवान आकर हृदय में कैद हो जाते हैं। और जब भगवान अंदर आ ही गए हैं, फिर अनर्थ कहाँ रह जाएंगे, क्योंकि कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, या हरि कृष्ण ता हर नहीं माया अधिकार, तो माया भाग जाती है और कृष्ण प्रेम जो है वो छलछला कर हमारे हृदय में उपस्थित हो जाता है, और हृदय के अंदर इतना आनंद इतना संतोष उत्पन्न होता है कि जीव सोचता है कि मैं इस भौतिक जगत का नहीं बल्कि वैकुंठ धाम का वासी हूँ, और उसी का आनंद अनुभव कर रहा होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह से शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करने में अत्यंत ये प्रभावशाली होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से शुद्ध भक्तों की तरह आप सबको सुना सकूं, जो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी है उसको, ताकि आप सबके हृदय जो है वो उनके अंदर भी भगवान की अनुभूति हो और भौतिक वस्तुओं से आकर्षण समाप्त होकर भगवान की ओर लग सके। हरे कृष्ण।